कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अजामिल के एक दूसरे जीवन की, एक और उसको अवसर मिला जीवन जीने का। वैसे तो उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन भगवान का नाम लिया और फिर एक और अवसर मिला। अजामिल की कथा से जो हमने कल सुना, आज हम लोग वैसे यमराज के उपदेशों को सुनने वाले हैं, लेकिन अजामिल की कथा से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम अपने जीवन में ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम अजामिल की कथा से ये सीखते हैं कि कैसे अजामिल, इसकी आवाज़ धीमी करना, बहुत तेज है, इसको थोड़ा स्लो करो आवाज। हरे कृष्ण। तो अजामिल की कथा से हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे जब अजामिल, उसको बहुत अच्छी तरह ज्ञान दिया गया था, भक्ति कर रहा था, अच्छे पथ पर चल रहा था, लेकिन केवल एक ऐसी घटना के कारण सारा उसका पतन हो गया। कितना वो बुरा व्यक्ति बन गया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, हत्या करने लगा, लूटने लगा, केवल एक ऐसा घटना हुई जिससे उसको ऐसा उसके मन पर प्रभाव पड़ा कि वो सारे बुरे कार्य करने लगा। तो इसीलिए हमें पहली ये शिक्षा अजामिल की कथा से लेनी चाहिए कि हमें हर वक्त सावधान रहना चाहिए। कभी भी हम ऐसी व्यवस्था या ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं डालें जिसमें कि हम ऐसे कुछ कार्य कर बैठें जो सही नहीं है, जो हमारे लिए आगे चलकर नाश का कारण बने। इसलिए सदैव हमें सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जीवन, ये पूरा जीवन हमें सावधानी से बिताना चाहिए। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि पशुओं की तरह हम इस जीवन को बर्बाद कर दें, हम इसमें कोई ध्यान नहीं रखें, जैसा जीवन चाहें वैसा जिएं, जैसा मन में आए वैसे रहें, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए पहली चीज, बहुत ध्यान पूर्वक हमें जीवन जीना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपहार है। अपने जीवन को कभी कोसना नहीं चाहिए अपने आप को कि हाय मेरे को ऐसे हुआ, मुझे ये मिला, मुझे वो शरीर मिला, मुझे ये न मिला होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, हमें बहुत बड़ा उपहार मिला है भगवान की तरफ से। जैसा भी शरीर मिला हो, जिस धर्म में मिला हो, जिस जाति में मिला हो, जिस रंग का मिला हो, जिस आकार का मिला हो, वो एक उपहार है भगवान का। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर ये उपहार है, भगवान की बहुत बड़ी भेंट है हमें, और इसका उपयोग कैसे करना है उसको हमें सीखना चाहिए। तो अजामिल की कथा से पहला ये शिक्षा हम लेते हैं कि बड़े ध्यान पूर्वक हमें जीवन जीना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर, जैसे जब हम लोग बचपन में पढ़ाई शुरू कर रहे थे, तो शुरुआत में स्कूल में हम लोगों को एंगल्स बनाना सिखाया गया था, 90 डिग्री एंगल, फिर 45 डिग्री एंगल। बचपन में सब लोगों ने सीखा होगा, आपने भी, हम लोग ऐसे बनाते थे, ऐसा कुछ डी होता था तो उसके एंगल लेकर प्रॉपर 45 डिग्री या 65 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री एंगल होता था वो ऐसे एक लाइन होती थी, और ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, और एकदम सही। अब अगर उसमें हम लोग एंगल लेते समय शुरुआत में थोड़ा सा बदल देते, थोड़ा एक दो डिग्री का अंतर हो जाता है, तो ये जो लाइन ऐसे जानी चाहिए वो यहीं से चलती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे जाती है, मतलब आगे चलकर एंगल बहुत बड़ा हो जाता, अंतर बहुत बड़ा हो जाता। तो यही हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन, बड़ी सावधानी से जीना है। जरा सा भी हम इधर उधर हो गए और फिर हमारी जो गति होगी वो बहुत बुरी होगी, हम जान नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए शुरुआत में बच्चा कोई छोटी छोटी मोटी चोरी करता है, स्कूल से कहीं दुकान से कोई पेंसिल ले आता है, चॉकलेट ले आता है, जानता नहीं है, छोटा बच्चा है, अच्छी लगी उठा लाया, और अगर उसको समझाया नहीं जाए, अगर उसको ठीक से बताया नहीं जाए तो आगे चलकर वो क्या बनेगा, उसके लिए वो स्वाभाविक होगा। लेकिन अगर वहीं पर रोका जाए, उसको समझाया जाए, बच्चे को समझाया जाता है नहीं ये नहीं करना। हम कई ऐसे माता पिता को जानते हैं जो बताते हैं कि बड़े अच्छे घर से हैं, लेकिन बच्चे की इच्छा हुई उसने उठा लिया, और जब उन्हें बाद में पता चला तो फिर से वापस लेकर गए, उसको दुकान में वापस करवाया ताकि बच्चे को पता चले कि ये गलत है। तो थोड़ा बहुत भी अगर हम जीवन में सावधान नहीं रहते हैं तो हमारी गति बहुत बुरी हो सकती है, इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये पहला शिक्षा कल की जो कथा हमने कही अजामिल की, उससे हम सीखते हैं। दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा ऐसी बुरी चीजों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अजामिल बहुत चिंतन कर रहा था, उसने देख लिया उस वेश्या को, उसने देख लिया उस पुरुष को कुछ करते हुए, तो बस उसी का चिंतन, उसी का चिंतन, जिससे उसकी आसक्ति बहुत बढ़ गई। तो इसीलिए हमें अगर चिंतन करना है तो अच्छी चीजों का, गलती से अगर हमारे हम कुछ बुरी चीजों को देख भी लें तो भी चिंतन हमें नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा चिंतन करने से फिर उस चीज के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, तो चिंतन नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा हम संदेश सीख सकते हैं, दूसरी शिक्षा ले सकते हैं कि पहली चीज कि हम बड़े ध्यान से जीवन को बिताएं, ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कुछ आगे चलकर तकलीफ हो। दूसरा, ध्यान नहीं करें ऐसे विषयों का, ये हमें सीखना है। और फिर तीसरा, हम देखते हैं कि भले ही वो बड़ा पापी था, कार्य ऐसे पाप के कर रहा था, पाप करते करते, लेकिन उसकी इच्छा केवल ये थी कि जितना हो सके मैं आनंद ले लूं। तो हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन इसलिए नहीं बना है कि हम केवल आनंद लें, केवल शरीर को आनंद दें, इसके लिए हमारा ये मनुष्य जीवन नहीं है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा उपहार है जिसमें सुविधा दी गई है भगवान को प्राप्त करने की, समय दिया गया है भगवान को प्राप्त करने का, और क्षमता दी गई है। ये पशुओं में नहीं होती है, ना बुद्धि है उनमें, ना उनके पास सुविधा है भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन हम सबके पास है। तो इसलिए ऐसी सुविधा का उपयोग करना चाहिए। तो ये हम लोग अजामिल की कथा से, और महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि जब हमें पता चले, अजामिल को मृत्यु के समय पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले पता था, भूल गया, गलत काम करने लगा, और फिर मृत्यु के समय विष्णु दूतों ने उसको फिर से बताया। तो उस समय भी जब उसको ये पता चल गया कि मुझे क्या करना है, तो उसने तुरंत गंभीरता से अपने जीवन को लिया। तो ये हमें महत्वपूर्ण बात अजामिल की कथा से सीखनी है कि भले ही हमने कुछ गलत काम कर लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन जब हमें पता चला कि ये काम हमें नहीं करना है, ऐसे जीवन नहीं जीना है, तुरंत जीवन बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। अजामिल ने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हमारा कष्ट यह है कि हम अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। पाना सब कुछ चाहते हैं, हम सुखी भी रहना चाहते हैं, कष्ट नहीं हो जीवन में ये भी चाहते हैं, लेकिन जीवन बदलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं जैसा जीवन चल रहा है बस वैसा ही चलता रहे, और उसमें ही अगर मेरा सुख हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जीवन बदलने तैयार नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे जीवन बदलना बड़ा कष्ट है। कोई कष्ट नहीं है जीवन बदलने में, केवल आप मन में तैयारी करो। हम तैयार नहीं है बदलने के लिए, तकलीफ तो वो है तकलीफ ये नहीं है कि जीवन कैसे बदला जाए, तकलीफ ये है कि कैसे अपने मन को समझाया जाए कि हमें जीवन बदलना है। आप लोगों को बताएं कि अगर आप अपने मन को बड़ा कड़ा कर लें, मन को मजबूत कर लें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यस, कुछ भी कर सकते हैं इस जगत में, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर मन को आपने स्ट्रांग बनाया। हमारे जहां पर फेलियर्स होते हैं, जहां पर हमारी असफलता होती है, उसका प्रमुख कारण पहला ये होता है कि हम मन को स्ट्रांग नहीं बनाते। मन हमारा कमजोर होता है, इसीलिए नहीं कर पाते। आपको उदाहरण देते हैं, वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है जहां पर कई लोग जाकर परिक्रमा करते हैं। 21 किलोमीटर के करीब ये परिक्रमा है, तो 21 किलोमीटर कोई छोटा नहीं है, काफी समय, और फिर चलते रहना तो लोग थक जाते हैं, कभी रिक्शा में बैठ जाते हैं, कभी कहीं ऐसे बहुत तकलीफ, कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो शारीरिक दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, लेकिन रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हर रोज। तो कैसे होता है, ना उनका शरीर इतना शक्तिशाली है, ना उनमें कोई बहुत शक्ति है, मन मजबूत है। उन्होंने मन में पहले कार्य किया, इसीलिए हमें कार्य पहले मन में कर लेना चाहिए, फिर वो बाद में बाहरी दृष्टि से हो जाएगा। मन मजबूत करना बहुत आवश्यक है, और जीवन को बदलने के लिए मन को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बारंबार हमें अच्छे मार्ग पर जाने से रोकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हमारा मन हमारा शत्रु हो सकता है या मित्र हो सकता है, ये आपके ऊपर है। जैसे एक चाकू होता है, चाकू को कैसे इस्तेमाल करना है ये इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है, वो उससे हत्या भी कर सकता है या उससे ऑपरेशन करके प्राण बचा सकता है, दोनों काम चाकू से होते हैं। शरीर को काटा जाता है ना ऑपरेशन के लिए, तो चाकू इस्तेमाल होता है, और वही चाकू आप किसी के शरीर में उसको घुसाकर उसको मार भी सकते हैं। तो इसी तरह हमारा मन है, मन अच्छा और बुरा नहीं होता, मन का उपयोग अच्छा और बुरा होता है। जैसे चाकू अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, कौन कह सकता है कि चाकू बुरा है या चाकू अच्छा है। एक हत्यारे के हाथ में चाकू हो तो वो बुरा है, डॉक्टर के हाथ में है तो अच्छा है। तो इससे चाकू अच्छा बुरा नहीं है, उसका उपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। इसी तरह हमारा मन अच्छा और बुरा नहीं है, मन का उपयोग उसे अच्छा और बुरा बनाता है। और इसीलिए, क्योंकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा आनंद लेने में लगाते हैं, इसीलिए हमारा मन अच्छे मार्ग पर चलने नहीं देता, हमें खींचता रहता है। आप सबको अनुभव होगा, आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, आप सोच लेते हो कुछ भी हो जाए, कल से ये करूंगा वो करूंगा, थोड़ा समय बस, फिर से वही वही चीजें। जैसे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, 31 दिसंबर आता है, नया साल का रेजोल्यूशन, इस साल ये करूंगा वो करूंगा, 3 दिन भी रेजोल्यूशन नहीं रहता, 1 दिन 2 दिन फिर समाप्त, छोड़ो कौन करे। मन मजबूत नहीं है, तो मन को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको अब हम यमराज के उपदेशों में सुनेंगे। तो कल हमने कथा कही थी कि यमदूतों को वापस जाना पड़ा, तो लोग वापस गए यमराज के पास, और बड़े गुस्से में थे, क्रोध में थे यमदूत। दरअसल उनकी तो इच्छा थी कि ये जो 4 लोग आए थे, ये विष्णु दूत, इनको अरेस्ट करके ले जाएं यमराज के पास, लेकिन उतनी शक्ति नहीं थी, पकड़ नहीं पाए। तो बड़े गुस्से में पहुंचे यमराज के पास, और यमराज से कहने लगे, मानो एकदम जैसे गुस्से में कह रहे हो कि हमें ये बताइए कि इस जगत में, इस दुनिया में कितने नियंत्रक हैं, कितने मालिक हैं। क्योंकि वो सोचते थे एक ही मालिक है यमराज, और हम उसके सेवक हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता। और हुआ भी नहीं था कभी, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यमदूत गए हों कहीं पर, उनको खाली हाथ आना हो। तो उन्होंने कहा कि कितने मालिक हैं पहले बताइए, कितने नियंत्रक हैं इस जगत में, एक है या कई हैं? और अगर एक है तो क्या वो आपसे ऊंचा है कोई, आपसे बड़ा है, या फिर कई नियंत्रक हैं? नियंत्रक समझते हैं आप लोग ना, कंट्रोलर्स, नियंत्रण करने वाले। तो यमदूतों ने कहा कि अगर कई नियंत्रक होंगे तो ये दुनिया चलेगी कैसे? कोई व्यक्ति अपना आदेश देगा, दूसरा अपना आदेश देगा, तो दुनिया चल नहीं पाएगी। और सही भी है ना, किसी भी जगह पर मान लीजिए एक ऑफिस में तीन तीन लोग हैं जो ऑफिसर्स, तीन ऑफिसर्स, तीनों को समान पावर्स है, तो वो एक ऑफिसर अपने व्यक्ति को कुछ करेगा, दूसरा उसको करेगा, तो ऑफिस कहां से चलेगा? एक आदेश देगा ऑफिसर की, ठीक है एक काम करो ये चीज खरीद लो, दूसरा ऑफिसर बोलेगा नहीं खरीदना, तो कैसे चलेगा? तो यमदूत यही कहने लगे कि कैसे होगा, एक कोई आदेश देगा दूसरा कोई आदेश देगा, तो एक नियंत्रक होना चाहिए। और क्या आपसे भी ऊपर कोई है? हम तो सोचते थे आप ही सबसे बड़े हैं इसलिए आपकी सेवा करते थे, लेकिन क्या आपसे भी ऊपर कोई है? कृपया हमें बताइए, क्योंकि हम तो गए थे लाने और ये चार लोग वहां पर आ गए और उन्होंने केवल, इस अजामिल इतना पापी आदमी, इसने केवल नारायण नाम ले लिया, तो ये नारायण नाम लेने से उसको बचा लिया वो लोगों ने, हमें ले जाने नहीं दिया, हमने रस्सी बांध ली थी, खींच रहे थे, लेकिन उन्होंने खोल दी रस्सी और ले जाने नहीं दिया। अब बताइए, अब आपके राज्य में ये सब होगा तो कैसे चलेगा? अर्थात वो कह रहे थे कि अभी उनको बुलाकर दंड दीजिए, जो भी वो लोग हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यमराज ने जब ये सुना तो यमराज ने उनके मुख से नारायण का नाम सुना, यमराज तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तो यमराज ने नारायण सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए और फिर उनको बोलने लगे, उनको बोला ठीक है शांत हो जाओ, बैठ जाओ, चिंता मत करो, इतना कष्ट मत लो। तो क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो तुम कह रहे हो कि इस जगत में एक नियंत्रण करने वाला है तो वो सत्य है, एक ही नियंत्रण करने वाला, लेकिन वो मैं नहीं हूं। यमराज कहते हैं वो मैं नहीं हूं, वो नियंत्रण करने वाला कोई और है। तो वो भगवान का वर्णन करने लगे। आप लोग आगे आ सकते हैं, इस तरफ बैठ जाइए, जगह है काफी, आगे आके बैठ जाइए उस तरफ। इस तरफ बैठिए, खाली है, बैठ सकते हैं आकर, अगर कोई बैठना चाहे। तो यमराज कहने लगे कि जो आपने कहा वो सही है, एक ही नियंत्रक है, लेकिन मैं नहीं हूं, और मेरे ही नहीं, चंद्र, वरुण, इन सब के ऊपर एक नियंत्रक है जिसे भगवान कहते हैं। तो यमराज समझाने लगे कि देखो, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझो, ये जो तुम देखते हो, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब उन भगवान के केवल अंश मात्र हैं, और इन सारे देवताओं के ऊपर एक नियंत्रक है जिसे विष्णु कहते हैं, भगवान कहते हैं, और वो भगवान, वो नारायण, वो सबको नियंत्रण करते हैं। और कैसे नियंत्रण करते हैं? उदाहरण देते हैं बैल का। जैसे एक बैल होता है तो बैल की नाक में रस्सी डाल दी जाती है, आपने देखा है, बैल को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, बहुत शक्ति होती है उसके अंदर, उठाकर फेंक सकता है आपको गुस्से में आ जाए तो। लेकिन उसको जब नियंत्रण करना होता है तो उसके नाक में रस्सी, बचपन से रस्सी डाल दी जाती है, तो जरा सा रस्सी को खींचते हैं तो एकदम नियंत्रण में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है। बैल को सबसे ज्यादा दर्द होता है जब नाक में रस्सी खींची जाती है, तो इसीलिए एक छोटा सा बच्चा भी बड़े विशाल बैल को बड़ी आसानी से वश में कर लेता है केवल वो रस्सी के द्वारा। जहां बैल जाने लगता है, जरा सा खींचता है बैल, एकदम इतना दर्द होता है कि वो कुछ नहीं करता, जहां खड़ा वहीं खड़ा रह जाता। तो जैसे एक बैल को रस्सी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, भगवान इस सारे जगत को नियंत्रण करते हैं। और वो रस्सी क्या है? यमराज कहते हैं वो रस्सी है वेदों की रस्सी, अर्थात भगवान नियम के द्वारा, वेद के द्वारा इस जगत को नियंत्रण करते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे भारत देश है इसमें एक संविधान है, ये सरकार भारत देश को संविधान के अनुसार चलाती है। अगर आपको कभी पुलिस पकड़ कर ले जाए, ले नहीं जाएगी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर ले जाए तो उन्हें बताना होगा कि इस संविधान के इस धारा के तहत अंडर सेक्शन सो एंड सो आपके ऊपर ये इल्जाम लगा। तो संविधान के अनुसार राज्य किया जाता है, इसी तरह मनुष्य जीवन वेदों के अनुसार चलता है। अगर मान लीजिए भारत में संविधान ना हो तो कैसे शासन होगा? कोई तो नियम होना चाहिए ना। अगर पुलिस आकर आपको पकड़ेगी तो आप बोलोगे क्या बात है, बोले आपने चोरी की, हाँ तो किया, क्या बात है? तो आप बोलोगे, बोलेगे अरे चोरी की इसलिए पकड़ रहा हूं, बताओ कहां लिखा है कि चोरी करना पाप है, चोरी करना नहीं करना है, चोरी करोगे तो दंड मिलेगा। अब संविधान ही नहीं है तो पुलिस वाले क्या बताएंगे? तो फिर पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, कैसे पकड़ेंगे आपको? इसी तरह वेद जो है ये मनुष्यों के लिए संविधान है। अगर वेद ही नहीं होंगे तो मनुष्य जीवन कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है? तो इसीलिए वेद बहुत आवश्यक है। तो वेदों के द्वारा नियंत्रण कर लेते हैं भगवान। तो ऐसे यमराज बताने लगे और फिर वो कहते हैं कि भगवान हैं, दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, बोलते तुम्हारे शरीर में आंखें हैं ना, तो यमदूतों ने कहा हाँ आंखें हैं। तुम्हारे हाथ तुम्हारी आंखों को देख पाते हैं? यमदूतों ने कहा नहीं, हाथ कहां से, आंखें को तो आंखें ही सब देखती है ना, हाथ थोड़ी देख पाता है। अच्छा गला देख लेता है? नहीं गला भी नहीं देखा। अच्छा मुंह देख लेता है तुम्हारा? नहीं। तो यमराज कहते हैं जैसे शरीर में आंखें हैं लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता क्योंकि आंखों के कारण सब देखा जाता है। आंखों को कौन देख सकता है आप बताइए? कोई देख सकता है आंखों को? आपके पैर देख सकते हैं कि ये आंखें हैं? देखेंगे कहां से? तो कहते हैं कि जैसे आंखें होती हैं देख नहीं पाता, इसी तरह भगवान है लेकिन जीव अज्ञान के कारण देख नहीं पाता उन्हें। और भगवान अपने भक्तों की, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, अपने भक्तों की बड़ी रक्षा करते हैं। किससे करते हैं? शत्रुओं से रक्षा करते हैं, मुझसे रक्षा करते हैं, मतलब खुद कह रहे यमराज से रक्षा करते हैं, कोई विपत्ति आ जाए तो उससे रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं वो मेरे अधिकार के परे हैं, उनको तुम हाथ नहीं लगाना, यमदूतों को वो कह रहे हैं, क्योंकि वे लोग धर्म का पालन करते हैं। तो यमराज कहते हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने बनाया हुआ जो धर्म है वो सच्चा धर्म है और उनके भक्त उसका पालन करते हैं, और ऐसे धर्म को 12 लोग जानते हैं। वो कहते हैं तो वो नाम देते हैं सबका, स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म वयासाकी वयम वलिम। तो ये सब जो हैं ये लोग इनको जानते हैं, जैसे नारद ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, शंभु शिव जी हैं, और फिर कुचार कुमार हैं, कपिल मुनि हैं, मनु हैं इत्यादि। तो ऐसे वो कहते ये लोग जानते हैं इन सबको, और वयम, वयम मतलब मैं भी जानता हूं क्योंकि वो भी महान भक्त हैं एक। तो ऐसे उन्होंने कहा और फिर वो कहने लगे कि ये लोग मेरे अधिकार में नहीं हैं, इनके पास कभी नहीं जाना, भूल कर भी दूर रहना इनसे। किन से? जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, जिनके मुख पर भगवान का नाम देखो कभी नहीं जाना उनके पास, तुम्हारा अधिकार नहीं है उनके ऊपर। देखिए ऐसे कैसे हो सकता है कि बाकी सब पे अधिकार है और यमराज का भक्तों पे अधिकार नहीं है? ऐसा हम लोग इस देश में भी देखते हैं। इस देश में दूतावास होते हैं, एम्बेसी, तो एम्बेसी भारत में ही है लेकिन भारत की सरकार को उसके अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। आप जानते हैं दूतावास है लेकिन हमारी पुलिस उसमें प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि वो जो एरिया है अंदर का वो फिर जिस देश का दूतावास है वो उस देश का क्षेत्र, हालांकि भारत में है लेकिन उस एरिया में अंदर जाने के लिए हमें फिर उनके सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, ये नियम है। तो इसीलिए जब यहां इस देश में ऐसा हो सकता है तो फिर भगवान के नियमों में क्यों नहीं हो सकता। तो यमराज कहते हैं वो मेरे अधिकार में नहीं है, क्योंकि वो भगवान के नाम का जप करते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के महत्व को समझना, ये जानना कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। केवल बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े अपने आप को दार्शनिक मानते हैं कि हमें दिखाइए भगवान है क्या, कैसे आप कह सकते हैं भगवान है, आप लोग ये बात करते हैं वो बात करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस देश में कोई खड़ा होकर चिल्लाने लगे कि प्रधानमंत्री है ही नहीं इस देश में, बताओ है तो सामने लाओ मेरे, नहीं तो मैं नहीं मानता, तो लोग कहेंगे मत मानो, कोई फर्क पड़ने वाला है, प्रधानमंत्री हैं वो बने रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे नहीं मानने से प्रधानमंत्री मर जाएंगे, वो तो वैसे ही बने रहेंगे। इसी तरह जो लोग कहते हैं खड़े होकर कि मैं भगवान को नहीं मानता मुझे दिखाओ, तो कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है मत मानो, भगवान तो अपने आप को दिखा ही देते हैं अंत में, मृत्यु के समय सब कुछ हर लेते हैं। तो यमराज कहते हैं उन लोगों के पास नहीं जाना, और किन के पास जाना उसका वर्णन वो करते हैं यमराज, ये हमारे लिए जरूरी है। यमराज कहते किन लोगों के पास जाना, पहला वो कहते हैं कि जो लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं उनको उठाकर लेकर आना मेरे पास यमराज। ये आप भागवत में पढ़ सकते हो, भागवत में ये छठे स्कंद में आता है 3rd अध्याय में, तो आप इसको पढ़िए। यमराज कहते जो भगवान का नाम नहीं लेता उसको उठाकर ले आओ मेरे पास। दूसरा, जो भक्तों का संग नहीं करता उसको उठाकर ले आओ मेरे पास। तीसरा, जो परिवार में बहुत ज्यादा आसक्त है उसको उठा के ले आओ मेरे पास। बहुत स्पष्ट वो वर्णन कर रहे किस किस को लाना चाहिए मेरे पास में, तो उनको उठा कर ले आओ, लेकिन बाकी किसी जो भगवान के नाम ले रहे हैं उनको मत लेकर आओ मेरे, वो ला ही नहीं सकते, आपका अधिकार नहीं है, उनके पास जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे यमराज वर्णन करते हैं। तो देखिए इससे हम लोग क्या सोच समझते हैं कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके जीवन में हम भगवान का नाम ले लें, क्योंकि नाम लेने से हमारे अंदर जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, पाप हैं, ये मिट सकते हैं, इतना शक्तिशाली है ये नाम। और हर धर्म में भगवान का नाम लेने के लिए कहा गया। जब हम भगवान का नाम कहते हैं तो ये ऐसा नहीं कि किसी एक संस्था के द्वारा इसको कहा जा रहा, सारे धर्मों में, शास्त्रों में, वेदों में, जो आप लीजिए, बाइबल हो, कुरान हो, हरेक में कहा गया भगवान के नाम को लेना। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो भगवान के नामों को लेने के लिए नहीं कहता। तो इसलिए हमें भगवान के नाम को लेना चाहिए। अब भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल उसको लेने से ही, केवल भगवान का एक बार, जैसे वो उदाहरण देने लगे यमराज की, देखो अजामिल एक बार उसने नाम लिया कैसे शुद्ध हो गया। तो इसलिए एक बार नाम लेने से ही भगवान का हमें बड़ा लाभ होता है, हम नीचे की योनियों में जाने से बच सकते हैं। तो इसीलिए यमराज समझाने लगे कि ऐसे लोगों को मेरे पास लाने का आपको अधिकार नहीं है। और फिर यमराज दुख करने लगे, वो कहने लगे कि हाय मेरे मेरे सेवकों से कितनी बड़ी गलती हो गई, अजामिल जो इतना अच्छा आदमी हो गया था नाम लेकर उसको ये लोग लेने चले गए, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। यमराज क्षमा मांगने लगे कि बहुत गलती हो गई मुझसे। जीवन में गलतियां बहुत होती हैं, लेकिन उन गलतियों को हमें ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने जीवन में गलती नहीं की, लेकिन गलती करके उसको छुपाना, उसको ठीक नहीं करने का प्रयास करना, ये और बड़ी गलती है। गलतियां होना तो ठीक है, व्यक्ति बहुत गलती करता है, लेकिन उसको छुपाना नहीं चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हाँ कभी कभी सत्य बोलना भी भारी पड़ जाता है ना, और सत्य कैसा बोलना चाहिए। एक बार एक कोर्ट में एक प्रोफेशनल विटनेस था, प्रोफेशनल विटनेस जानते हैं आप, व्यवसायिक गवाह, मतलब उसका काम था गवाही देना, उसको पैसा दो वाकई बता, तुमने देखा? हाँ देखा। क्या देखा? हाँ उसने उसको मारा। देखा तुमने? हाँ देखा। उसका काम था गवाही देना। तो जब भी आता था तो उसे पूछा नाम, तो अपना नाम बताता था। उम्र बोलता था 60 साल। कई साल हो गए, उम्र 60 साल ही बोलता था। तो एक बार जज, अभी जज को भी पता था ये तो इतनी बार आता है, प्रोफेशनल है, तो जज ने उसको पूछ लिया कि अरे तुम जब भी आते हो हमेशा 60 साल, इतने सालों से मैं ही सुन रहा हूं, तुम्हारी उम्र 60 साल ही है? तो उसने बोला कि एक जो सच्चा आदमी होता है वो अपने शब्द कभी नहीं बदलता। मैंने एक बार 60 साल बोल दिया, हमेशा 60 साल ही बोलूंगा, सच्चा आदमी। तो ऐसा सच नहीं बोलना है हमें, ये सच नहीं है। हमें सच वो बोलना है जिससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ सके, वो सच्चा सच है। तो ऐसा सच हमें बोलना चाहिए, इस व्यक्ति की तरह नहीं जो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। एक बार 60 बोल दिया तो हमेशा 60 ही बोलता रहेगा। तो इसलिए जीवन हमें ऐसे चलाना चाहिए। ये जो कथा है अजामिल की, यमराज की, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी भी बहुत कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार भगवान का नाम लेता है, जितने भी उसने जीवन में पाप किए हैं वो सब से मुक्त हो जाता है। और यही एक ही मार्ग है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अपने पापों को नाश करने का, अपनी गलतियों को ठीक करने का। हम सब ने गलतियां की हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि आज तक मैंने जीवन में एक भी गलती नहीं की? कोई ऐसा जीवन जिया है कि कभी एक गलती नहीं की, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया, कोई पाप नहीं किया? इसीलिए हो गई गलती, उसको ठीक करने का मार्ग है भगवान के नाम को लेना। जितना हम भगवान के नाम को लेंगे उतना ही हम भगवान के निकट, सत्यता के निकट जाएंगे, झूठ से परे जाएंगे। ये जो जीवन हमने लिया हुआ है ये झूठा जीवन है, इसलिए सत्यता के निकट जाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे यमराज ने बहुत सुंदर उपदेश अपने दूतों को दिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। और फिर ऐसा जब हो गया तो सुखदेव गोस्वामी ने भी बताया कि ये कथा मैंने अगस्त्य मुनि से सुनी थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मन से बता रहा हूं, अगस्त्य मुनि ने ये इतिहास मुझे समझाया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इतिहास उन्होंने बताया, तो इससे हम लोग सीखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान के नाम को लेना। धोखा देना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार हम लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं और कई बार हम लोग धोखा खाते हैं। हम सोचते हैं हम प्रसन्न हैं लेकिन हम प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे एक बार की कथा है कि एक व्यक्ति था जो सुअरों को पाला करता था। सुअर जानते हैं आप लोग? क्या कहते हैं सुअर को? हाँ, हिंदी में पिग कहते हैं उसको। तो सुअरों को पालता था। एक दिन वो गया, उसने देखा गांव के बाहर, आप जानते हैं भारत में आज भी गांव में लोग गांव के बाहर जाकर सुअरों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, है ना? समझ में आया आपको? हर रोज सुबह जाते हैं वो लोग डब्बा लेकर और सुअरों के भोजन की व्यवस्था करके आ जाते हैं। तो ये व्यक्ति गया, उसने देखा कि अरे इतना सारा भोजन पड़ा है मेरे सुअरों के लिए। तो उसने सोचा कि अच्छा है, यहां से उठा के ले जाऊं, खिलाऊंगा, कोई खर्चा नहीं होगा, वो खाएंगे, फिर उनको बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, तो कितना अच्छा, बिना इन्वेस्टमेंट किए पैसा मिलना है। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना, हमारा भाव यही होता है कि पैसा मिले, इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े, समय नहीं देना पड़े, हमें आनंद आए लेकिन हम भक्ति नहीं करें। तो उसने भी सोचा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो जल्दी से एक टोकरी ले ली और उस सारा भर लिया उसने। देखिए पैसा कमाने की इच्छा में भूल गया वो क्या कर रहा है। खैर उसने भर लिया। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हमें तो सुनकर लग रहा होगा छी 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 छी, क्या किया जाके उसने, सुबह सुबह सब लोगों ने गंदा किया और वो जाकर सब उठा रहा है। लेकिन आप जानिए कई बड़े बड़े लोग भी इसको करते हैं। अमेरिका में नियम है कि सड़कों पर गंदगी करने से $200 फाइन हो जाता है। और आप ही नहीं, अगर आपका कुत्ता भी गंदगी कर देता है तो भी फाइन हो जाता है। तो आप सोचिए, कुत्ते को कैसे समझाएंगे कि हम अमेरिका में हैं, $200 फाइन होगा। तो कुत्ता है, वो अमेरिका में हो या भारत में हो, उसको जहां जगह मिलती है वो कर देता है, उसको कोई चिंता नहीं है। तो जितने भी कुत्ते के मालिक हैं अमेरिका में, वो सुबह सुबह कुत्ते को लेकर निकलते हैं घुमाने के लिए, बड़े शान से कि हम कुत्ते के मालिक हैं, हमारे पास ये कुत्ता। और मालिक क्या करते हैं, चलते हैं और फिर कुत्ते की जहां इच्छा होती है वो तो अपना काम कर देता है वहां पर, उस तो निकला ही उसी लिए घर के बाहर। तो वो जब कर देता है तो सड़क पे किया है। तो ये लोग जब चलते हैं कुत्ते को लेके, तो एक ग्लव्स लेके चलते हैं, एक छोटी सी बकेट लेके चलते हैं, और फिर जहां भी कुत्ता करता है फिर उसको बड़े प्रेम से साफ करते हैं और बकेट में डाल देते हैं, नहीं तो $200 रोज देना पड़ेगा फाइन। तो फिर उठाकर डालते हैं, कभी कभी लोग तो उठाकर उसको, बकेट नहीं होती तो क्या करें, फिर कहीं तो रखना है, तो और फिर चलते हैं कि हम मालिक हैं। बताइए, पता नहीं चलता कौन किसका मालिक है, कुत्ता मालिक है या फिर जो कुत्ते की गंदगी उठा रहा है वो मालिक है, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसा होता है। तो खैर, ये जो व्यक्ति था इसने सब उठा लिया और इसने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा है, मेरे जितने सुअर हैं इसको खाएंगे और फिर उनको मैं बेचूंगा, पैसा मिलेगा। तो रख कर जा रहा था, गांव के बाहर से रख कर आ रहा था। अब आप जानते हैं ना क्या रखा था ऊपर, एकदम फ्रेश रखा हुआ था। तो खैर, जब चलने लगा तो ऊपर से बारिश होने लग गई। तो धीरे धीरे, मतलब बारिश हो रही थी तो बारिश धीरे तेज हो गई। तो अब वो इतना मग्न था कि अरे अरे, मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम हो गया, इतना सारा मिल गया, अब मैं पैसा कमाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। अब वो चल रहा है और बारिश होने लगी, और स्वाभाविक है, बारिश होने के बाद टोकरी से वो सारा उसके शरीर पर टपकने लगा, सुगंधित चीज जो भी थी ऊपर। तो वो धीरे धीरे उसके शरीर पर सब आ रहा है और वो मजे में टोकरी लेके कि मुझे बहुत अच्छा हो गया। अब थोड़े लोग, बारिश हो गई तो पेड़ के नीचे खड़े वो देख रहे हैं। तो धीरे धीरे बारिश के कारण सारे शरीर पर उसके वो फैल गया, और आप सोच लीजिए कि सेंट लगाने की उसको जरूरत नहीं है, 1 किलोमीटर दूर तक वो खुशबू जा रही थी उसकी। तो लोगों ने देखा, क्या आदमी है। तो लोग उसको पुकारने लगे, बोलने, ए क्या कर रहे हो, इसको ठीक क्या क्या किया हुआ तुमने, सब गंदगी है। लेकिन वो सुनने तो तैयार नहीं, ये लोग सब मेरे विरोधी हैं, मुझे पैसा नहीं कमाने देना चाहते, इसीलिए मुझे रोक रहे हैं, मैं रुकूंगा नहीं किसी के कहने पर। चल दिया, चलता रहा। हम लोग भी इसी जीवन में इसी तरह हैं। हम लोग इस शरीर को लेते हैं, कोई व्यक्ति आकर समझाता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये इतना काम यहाँ पर करना, भगवान की भक्ति करो, तो हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी बाधा कर रहा है, मैं इस जगत में आनंद ले लूंगा इस शरीर से लेकर। तो बहुत सारे चीजें हम लोग इस जगत में करते हैं, हमें भी ये शरीर मिला है। दरअसल आत्मा शुद्ध है, ये शरीर अशुद्ध है। आत्मा उस व्यक्ति की तरह है और शरीर उसके ऊपर पड़ा हुआ वो जो सारी गंदगी है उसकी तरह, लेकिन हम उसको बनाए रखते हैं। इसीलिए भगवान का नाम हमें इन चीजों से परे ले जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम भगवान का नाम लें। जैसे यहाँ पे यमराज बता रहे हैं कि एक भगवान का नाम एक बार लेने से, केवल अगर आप एक बार भी भगवान का नाम ले लेते हैं तो निश्चित आप मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो अजामिल की ये कथा और उसको जो दूसरा अवसर मिला, एक और जीवन मिला, इसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं कि हमें भी अब आचार्यों की कृपा से, भक्तों की कृपा से एक दूसरा जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। हमें आकर समझाया जा रहा है कि कष्टों से बाहर निकलना है, भगवान का नाम लें, एक भक्ति का जीवन करें। तो जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान का नाम लें, भगवान की सेवा करें। सेवा के बिना मनुष्य रह नहीं सकता, उसको किसी ना किसी की सेवा तो करनी ही है। जैसे आप सब लोग, अगर आप लोग नेवी में काम करते हैं तो आप सरकार की सेवा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बिना सेवा के नहीं रह सकता, या तो वो सरकार की सेवा करता है, या किसी फैक्ट्री में किसी की सेवा करता है, घर में अपने परिवार की सेवा करता है, कोई नहीं मिला तो कुत्ते की सेवा करता है, लेकिन करता है। कोई व्यक्ति भी बिना सेवा के नहीं। तो हमें बस वो सेवा सही जगह पे करनी है, भगवान की सेवा करनी। सेवा ये मनुष्यों के लिए अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है सेवा। सेवा क्या होता है? सेवा उसे कहते हैं जहां बिना कुछ पाने की इच्छा से किया जाने वाला कार्य, वो सेवा। जैसे लोग मंदिरों में सेवा करते, मंदिर का मार्जन करते हैं। मंदिरों में आप जाएं तो बहुत अच्छा साफ सुथरा मंदिर होता है। कोई भक्त मंदिर का साफ कर रहे हैं, कोई प्रसाद बना रहे हैं, कोई प्रसाद वितरित कर रहे हैं, कोई लोगों के जूते चप्पल ठीक से रख रहे हैं। ये सारी सेवाएं हैं। उसके लिए कोई उनकी आशा नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सबको ऐसी सेवा में लगना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सेवा से हृदय शुद्ध होता। इसीलिए आप सबको कोई ना कोई सेवा जरूर करनी चाहिए। जैसे कल रविवार है, रविवार के दिन हम लोग मंदिर में कार्यक्रम करते हैं। थोड़े लोग आते हैं, करीब 150-200 लोग आते हैं मंदिर में। तो बहुत सी सेवा होती हैं, जैसे प्रसाद बांटना होता है, प्रसाद की व्यवस्था करनी होती है। कई भक्त आकर प्रसाद बनाते हैं। आप आइए और देखिए मंदिर में, वहां पर सब लोग अपना अपना घर चलाते हैं, संडे को आते हैं, सब मिलकर प्रसाद बनाते हैं लोगों के लिए, फिर उसको बांटने की सेवा होती है। बहुत सारी सेवाएं होती, तो ये लोग सब करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए ऐसा जीवन हमें जीने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए हो। केवल अपने लिए जीवन जीना ये स्वार्थ है। और कितने समय तक हम स्वार्थी बने रहेंगे, कितने समय तक केवल अपने लिए जीते रहेंगे? हमें दूसरों के लिए जीना, भगवान के लिए जीना प्रारंभ करना चाहिए। तो इसीलिए जब हम दूसरों की सेवा प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे उससे भगवान की सेवा होती है। भगवान से जुड़ना चाहिए, और उसने जुड़ने का मार्ग भगवान का नाम लेना। तो इसीलिए आप सबसे विनती है कि कृपया आप सब भगवान का नाम लेना प्रारंभ करें, मंदिर में आएं, हर रविवार को सेवा अर्पण करें अपनी, ताकि भगवान की सेवा हो सके। तो वैसे भी हम सब मंदिर में जो रहते हैं, हम लोगों को आवश्यकता है कि आप सब आएं और ऐसी कुछ सेवाएं करें, जैसे प्रसाद वितरण है, प्रसाद बनाना है। यहाँ पर तो होता है, हमने देखा जब हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर, तो आप सब लोग मिलकर बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, फिर उसको वितरित करते हैं। तो इसको साल में एक बार नहीं, हर रविवार कम से कम कर लेना चाहिए। तो आप सबसे विनती है कि आप सब इस भक्ति के मार्ग में जुड़ें, और सबसे महत्वपूर्ण इस नाम को लेना प्रारंभ करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी, कोई जिज्ञासा मन में आपके? भगवान के नाम के विषय में, या पीछे दीजिए माइक, कोई लेके जाओ पीछे। जगन्नाथ थोड़ा भाग कर जाओ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला कि मन अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसका उपयोग अच्छा या बुरा होता है। भौतिक जगत की हरेक चीजों के लिए लागू है या फिर सिर्फ मन के लिए लागू है?
हर चीज पर, हर वस्तु पर ये लागू है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर अच्छा बुरा नहीं होता है ना, इसका उपयोग उसे अच्छा बुरा बनाता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या जन्म से बुरा होता है? कोई बुरा नहीं होता। जन्म होते ही वो थोड़ी सोच लेता है कि आगे चलकर इतना बड़ा डाकू बनूंगा कि पुलिस मेरे पीछे भागेगी। नहीं, वो बचपन में तो सब लोग यही सोचते हैं कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो सब यही होता है। लेकिन फिर धीरे 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 कहाँ व्यक्ति कहीं, जैसे हम बता रहे थे, डेविएशंस हो जाते हैं, अलग चला जाता है। तो इसी तरह तो क्या हुआ उस बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा था जब जन्म लिया, कभी उसने सोचा नहीं कि हम लोग, हम मैं कोई डाकू बनूंगा, चोर बनूंगा, हत्या करूंगा, लेकिन कर बैठता है। तो क्या हुआ उसे, उसका उपयोग उसने सही नहीं किया। तो इसी तरह चाहे मन हो, हमारा शरीर हो, हमारे आसपास का वातावरण हो, हर चीज को हम अगर उपयोग सही करें तो वो हमें मदद करेगी भगवान की ओर जाने में। लेकिन अगर उसका उपयोग सही नहीं होगा तो वही चीज हमें रोक देगी भगवान की ओर जाने से। बड़ा सरल है, कोई भी चीज क्यों ना हो। जैसे व्यक्ति का परिवार है तो वो कह सकता है कि परिवार है मेरा, मैं तो भक्ति नहीं कर सकता, आप लोगों के लिए ठीक है, आपको तो ना कोई पत्नी है ना बच्चे हैं, आप दिन भर हरे कृष्णा कीजिए, लेकिन हमारा क्या खाना, बच्चे रोज मांगते हैं, आजकल डोनेशन इतनी देनी पड़ती है, उसको मेडिकल में डालना है, तो इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए जहां जैसे हैं उसका उपयोग भगवान की भक्ति में, उसको भगवान से जोड़ना चाहिए। तो हर चीज का उपयोग हो सकता है भगवान की सेवा में। जैसे हमारे अंदर कुछ गुण हैं, अवगुण हैं, क्रोध आता है हमें, या फिर अन्य चीजें हैं, तो उसको भी भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर किसी को क्रोध आता है तो उसको भगवान के जो विरोधी हैं, जो भगवान और भक्तों का विरोध कर रहे हैं, उनके प्रति क्रोध करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया अधर्मियों के प्रति। तो इस तरह हर चीज को भगवान की सेवा में लगाने से उसको उपयोगी बना सकते हैं। तो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी इच्छाएं हैं। आज हमारी इच्छाएं केवल हमारे लिए हैं, हम आनंद लेना चाहते हैं, हम सोचते हैं शरीर को जितना आनंद दे तब अच्छा होगा, लेकिन उसको ही केवल भगवान की ओर मोड़ देना है कि हमें ये सोचना है कि ठीक है मेरा ये शरीर भगवान की सेवा में लगे, बस। तो शरीर का सही उपयोग तब होगा जब उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो इसीलिए हर चीज को उपयोग के आधार पर अच्छा और बुरा कहा जा सकता है। और कोई प्रश्न है किसी का?
आप जो बोल रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और लक्ष्मी नारायण, ये सब कौन कौन
है? ब्रह्मा विष्णु महेश और
लक्ष्मी नारायण,
हाँ,
ये सब कौन कौन है?
कौन कौन है? और आप भारत में रहते हो? भारत में हमसे पहली बार किसी ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? हाँ, लक्ष्मी नारायण। हम जब बाहर जाते हैं तो लोग ये प्रश्न करते हैं और हमें पता है, इसलिए हम बाहर तो बहुत आराम से, भारत के बाहर तो लोगों का एक कॉमन प्रश्न है। हम एक बार प्रवचन दे रहे थे तो हमने महाभारत का वर्णन कर दिया बाहर, तो लोग पूछे महाभारत क्या है। लेकिन भारत में कोई पूछे तो जरा विचित्र लगता है। खैर, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के अंश अवतार हैं जो इस जगत को चलाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी इसकी रचना करते हैं, जगत जो बना है, ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप, और शिव जी इसका संहार करते हैं, संहार मतलब जब प्रलय होता है उसको नाश करते हैं, और विष्णु इसका पालन करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के गुण अवतार कहे जाते हैं, गुणा अवतार, अर्थात तीन गुणों को वो प्रकट करते हैं, जिसमें सत्व गुण आता है, रजोगुण आता है और तमोगुण आता है। तो इस तरह ये शिवजी, ये देवताओं के जो शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। फिर उनसे ऊपर जैसे यमराज समझा रहे हैं कि ये एक ब्रह्मांड है, वैसे इसको बड़े विस्तार से अगर समझाएं तो बहुत समय जाएगा, आपको थोड़ा सा समझ, ये एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं, शिव जी होते हैं, विष्णु होते हैं, लेकिन इन सारे ब्रह्मांडों के परे एक स्वामी है सारे ब्रह्मांडों के, तो वो इनको सब नियंत्रित करते हैं। तो जब हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान का एक रूप है, नारायण, चतुर्भुज रूप जिसे नारायण कहते हैं, और उस रूप में भगवान की जो संगिनी है उन्हें लक्ष्मी देवी कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण वो भगवान का एक एक रूप है, अधिक विस्तार है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुण अवतार हैं जो केवल इस सृष्टि को चलाने के लिए हैं। आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मा जी नहीं हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां कोई ब्रह्मांड बनाना नहीं है। ठीक है, ये संक्षेप में बताया। अगर विस्तार में आप जानना चाहें तो इसके बाद हमें मिल लीजिएगा, उसको हम विस्तार से बता देंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के? हाँ, ऑन कीजिए उसको। हाँ,
आप बताए कि विष्णु भगवान है बोलके।
हाँ, विष्णु भगवान है। अच्छा, आप पूछ रहे ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर विष्णु भगवान, ये क्या गड़बड़ है ऐसे? अच्छा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब कहा जाता है तो वो जो मूल भगवान हैं उनके विस्तार होते हैं, अवतार लेते हैं, गुणावतार। वो इस जगत में विष्णु, विष्णु भी कई विष्णु हैं, एक विष्णु नहीं है। जैसे एक होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, एक होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, एक होते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। तो जब ये विष्णु हम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले जो त्रिदेवों के हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, वो एक एक देवताओं की श्रेणी जैसे मान लीजिए, अवतार, गुण अवतार। लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं जो इस ब्रह्मांड के परे हैं, तो वो भी विष्णु कहलाते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ होता है वो भगवान जो सब जगह व्याप्त हैं, उन्हें विष्णु कहते हैं। तो वो भी भगवान हैं, लेकिन वो एक देवता नहीं है, वो एक ब्रह्मांड चलाने के लिए कार्य नहीं करते जैसे विष्णु पालन करने के लिए करते हैं, तो वो उनसे भी परे हैं। वैसे अगर शास्त्र की दृष्टि देखी जाए, श्रीमद् भागवत में इसको समझाया गया है, मूल है श्री कृष्ण, फिर उनसे विस्तार होते हैं बलराम जी का, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह से नारायण निकलते हैं और नारायण से ये सारे विष्णु आते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है, इसीलिए हम विस्तार से बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप सोचोगे ये सब क्या चल रहा है, कौन सी दुनिया की बात है। लेकिन संक्षेप में समझने के लिए कि ये अवतार इस ब्रह्मांड के लिए हैं और इन ब्रह्मांडों के परे एक मूल भगवान है जो इन सबको नियंत्रण करते हैं, उन्हें भी विष्णु कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए आपको रेगुलर सुनना पड़ेगा। इनको 7 डे कोर्स के लिए रजिस्टर करो इनको। हमने यहाँ पर एक 7 दिन का भगवत गीता, कितने लोगों ने अटेंड किया था भगवत गीता कोर्स, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तो आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये सब चीजें आपको समझा देंगे, क्योंकि बड़े विस्तार से हमने उसमें समझाई थी। अच्छा, कोई अगर प्रश्न लिख कर भी भेजना चाहें तो लिख कर भेज सकते हैं, अगर पूछने में हिचक हो रही हो तो आप लिख कर भेज दीजिए। प्रश्न ऐसा है कि अजामिल ने इतने सारे पाप किए, फिर उसको कोई दंड क्यों नहीं मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है। अजामिल ने इतने पाप किए, दंड क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने पाप किए। थोड़े शांत रहिए, आप लोगों से ही कहा, थोड़ा शांत रहिए, पीछे भी शांति, ओम शांति शांति शांति। अजामिल ने पाप किए, उसको दंड क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने उन पापों का जो प्रायश्चित है, सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान का नाम लेना, उसको कर लिया। जैसे मान लीजिए कि सरकार का कोई कानून हो कि अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको, आपने अगर 2 साल तक टैक्स नहीं भरा तो फिर या तो आपको डबल पैसा देना होगा या फिर जेल जाना होगा। तो अजामिल ने डबल पैसा दे दिया पहले ही, तो वो जेल क्यों जाएगा? अगर कोई व्यक्ति डबल पैसा दे दे कि ठीक है ये सरकार का नियम है, तो उसने जितना भरना था टैक्स उससे डबल उसने दे दिया, तो फिर वो क्यों जेल जाएगा? क्योंकि उसने तो दे दिया, सरकार का नियम पालन किया। इसी तरह इस भौतिक प्रकृति की सरकार का ये नियम है कि अगर कोई पाप करता है तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन ये जैसे एक स्कीम आती है, कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम भेजते हैं कि आप इतना भर दो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, तो लेकिन अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसको कोई प्रायश्चित कोई दंड की आवश्यकता नहीं है। तो उसको दंड, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान का नाम ले और पाप करते रहें, ऐसा नहीं है। ये तो उसके लिए है कि किसी ने कर दिया, अब वो आगे नहीं करना चाहता तो भगवान का नाम, वो ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे कितना बढ़िया उपाय मिल गया, रोज पाप करो, रात को घर पे जाके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, फिर अगले दिन पाप करो, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं। अच्छा, ये शायद प्रश्न इसलिए पूछा गया था कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं। इसका अर्थ ये है कि अगर हमसे जो भी जीवन में पाप हो गए, अब हमें पता चला, तो आज के बाद हम लोग पाप नहीं करें, तब फिर उसको हम लोग उससे परे जा सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? कहां से बोल रहे हैं पहले ये बताइए, आकाशवाणी हो रही? हाँ, भगवान के सिर में मस्तक पर मोर का पंख क्यों रहता है? एक्चुअली वो कबूतर का भी लगाते तो भी आप यही प्रश्न करते थे, है ना? तो जब कबूतर का क्यों लगाया है, अब कुछ ना कुछ तो लगाना है उन्हें, जो उनको अच्छा लगा उसने। आपने पीली टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? आपको अच्छी लगी इसलिए आपने पहन ली, भगवान को अच्छा लगा मोर पंख, पहला कारण। भाई भगवान की भी तो कुछ इच्छाएं हैं, वो भी तो व्यक्ति हैं, तो उनको भी तो कुछ इच्छा होती है, उनको मोर अच्छा लगता है। दूसरा कारण ये है कि एक लीला हुई थी भगवान की वृंदावन में, कि एक समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गए थे, तो उस समय मोर नाच रहे थे, तो बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे मोर, और उनको देखकर श्री कृष्ण भी नृत्य करने लगे। तो जब श्री कृष्ण ने नृत्य करना शुरू किया तो जितने मोर थे वो सब रुक गए, क्योंकि इतना अच्छा नृत्य कर रहे थे कि सारे मोर रुक कर देखने लगे। और जब भगवान ने नृत्य बंद किया, जो मोरों के वहां प्रमुख थे, उन्होंने अपना पंख भगवान को अर्पण किया कि हम लोग और कुछ दे नहीं सकते आपको, ये आपके लिए पंख है। तो उसको लेके भगवान ने मस्तक पर धारण कर लिया, तब से उनका मोर पंख का मुकुट हुआ। तो ये भी एक कथा है, लेकिन मेन है कि उनको पसंद है। जैसे भगवान गोपाल कहलाते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, अब कोई कह सकता है भैंसों की क्यों नहीं करते? अब नहीं करते, उनको नहीं पसंद है, वो गोपाल है, भैंसपाल नहीं है, क्या कर सकते हैं, सही है ना? थोड़ी उनकी भी इच्छाएं होती हैं, लेकिन ये एक उनको उपहार मिला था इसीलिए उन्होंने लगा। ये और कोई प्रश्न किसी का? मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है कृपया बताइए? अगर आप कंप्यूटर्स जानते हैं तो हार्ड डिस्क होती है ना, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो उसका अंतर समझते हैं, जिसका भी प्रश्न अगर उसने कभी कंप्यूटर देखा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर आप कंप्यूटर खोलो तो दिखाई देगा ना हार्डवेयर, कि ये हार्ड डिस्क है, ये चिप लगी हुई है वगैरह, उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, आप उसको खोलो बोलो ये विंडोज है, ये एडोब है, सॉफ्टवेयर दिखता है नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर के कारण ही हार्डवेयर चलता है ना। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर का कोई वैल्यू है? डब्बा है वो तो फिर खाली। तो इसी तरह मस्तिष्क हार्डवेयर है, अगर आप ये खोपड़ी खोलोगे तो दिखाई देगा, खोलना मत, कभी प्रयास मत करना। आप लोग बोलो कि ठीक है, प्रभु जी ने बोला तो खोल के देखे है कि नहीं, और फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे खोल कर देख रहा है मतलब है ही नहीं, कोई फायदा नहीं। तो अगर इसको खोला जाए तो मस्तिष्क दिखाई देगा, वो हार्ड ड्राइव है या हार्डवेयर है, लेकिन उसको चलाने वाला मन है जो दिखाई नहीं देगा वहां पर। अब आप बताइए आपका मन कहां पे होता है? आपसे हमारा ये प्रश्न है जिन्होंने भी लिखा, मन कहां पे होता है? आप सबका मन है कि नहीं है? हाँ, मन है ना, माइंड, सब लोग का माइंड है ना, तो कहां होता है बताइए? अभी सब सोच रहे, बचपन से सुना था मन है मेरे पास, पता नहीं अभी है कि नहीं। कहां है मन? यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहां, पांव में है कि कहां है? मन सॉफ्टवेयर है, है ना, तो इसलिए वो चलाता है मस्तिष्क को। तो जिस तरह एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही मन और मस्तिष्क है। वैसे मन हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर बना है ये आठ चीजों से बना है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये आठ चीजों से आपका शरीर बना है, भूमि आपो यानी जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पांच बाहरी शरीर को बनाते हैं, ये जो बाहर का स्थूल शरीर है, और एक अंदर छोटा शरीर है हमारे शरीर के अंदर जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो मन बुद्धि और अहंकार से बना है। ठीक है, अच्छा विष्णु कई हैं, कौन से विष्णु जी को लक्ष्मी जी मिली थी ताकि हम लोग उनकी पूजा करें बाकी किसी की नहीं करें? मतलब इच्छा विष्णु की पूजा की नहीं है, मेन ध्यान लक्ष्मी पर है। रोका रोका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ एक्चुअली ये सबसे बड़ी तकलीफ हमारी यही है, सारा ध्यान लक्ष्मी पर रहता है, कितना बुरा है। देखिए पति पर ध्यान नहीं, पत्नी पर ध्यान कर रहे हैं, कितना गलत बात। मान लीजिए आप किसी के घर में जाएं, दरवाजा खटखटाएं, वो व्यक्ति बाहर आए, उनको बोले सर आज शाम को मैंने घर पे पार्टी दी है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप मत आना, आपकी पत्नी को भेज देना, केवल वो ऐसा मारेगा आपको, उसका आपका ना पार्टी रहेगी ना कुछ रहेगा, राइट? तो हम लोग भी यही करते, लक्ष्मी चाहते हैं। अरे नारायण वो ना आए तो अच्छा है, कौन पूजा करे। तो इसीलिए प्रश्न है कि कौन से वाले विष्णु के साथ लक्ष्मी है, बताइए, कहीं मैं दूसरे की पूजा करता रहा और लक्ष्मी नहीं आई तो फायदा क्या, राइट? इसीलिए देखिए दीपावली के दिन लोग अपना दरवाजा खुला रखते हैं घर का, बोलते दिवाली के दिन बंद नहीं करना चाहिए, क्यों? लक्ष्मी आती है, बाकी दिन क्या होता है, कहाँ जाती है पता नहीं। तो खैर ये जो प्रश्न है कि कौन से विष्णु के साथ लक्ष्मी जी रहती हैं, तो एक विष्णु है कारणो दक्षाई विष्णु, उनके साथ लक्ष्मी नहीं रहती। उसके बाद गर्भो दक्षाई विष्णु आते हैं, जैसे आपने एक चित्र देखा होगा लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, वो अनंत शेष पर लेटे हुए हैं, तो वो गर्भो दक्षाई विष्णु होते हैं, उनके साथ लक्ष्मी होती हैं। कारणो दक्षाई विष्णु का भी चित्र आपने कहीं देखा होगा कि वो अनंत पर नहीं लेटते हैं, वो कारण सागर में लेटे हैं, उनके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ऐसा चित्र देखा है किसी ने? तो उनके साथ लक्ष्मी नहीं होती हैं। तो लक्ष्मी देवी गर्भो दक्षाई विष्णु के साथ आती हैं, लेकिन मूल बात जानिए कि आध्यात्मिक जगत में जैसे भगवान हैं और उनकी नित्य संगिनी है, नित्य संगिनी यानी जो हमेशा उनके साथ रहती हैं, तो जैसे जैसे भगवान अवतार लेते हैं वैसे वैसे वो भी लेती हैं। अगर भगवान विष्णु नारायण बनते हैं तो वो लक्ष्मी बनती हैं, भगवान राम बनते हैं तो वो सीता बनती हैं, तो इसीलिए वो मूल हैं और वो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं। इसीलिए अगर लक्ष्मी को चाहते हैं तो नारायण की पूजा कीजिए, अपने आप लक्ष्मी आएंगी। पति रहे, लक्ष्मी चेस्ट वाइफ है, पति को छोड़ के नहीं जाती है कहीं पे, तो इसीलिए पति की पूजा कीजिए, पति आपके साथ रहेंगे तो पत्नी को तो रहना ही रहना है, लेकिन अगर पत्नी की पूजा करेंगे तो फिर पति का डंडा पड़ने वाला है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न। इस महामंत्र में तीन शब्द हैं, हरा, राम और कृष्ण। तो हरा शब्द ये भगवान की शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है। तो जब हम लोग कहते हैं कि हरा, तो हरा बोलने में हरे हो जाता है, जैसे अंबा अंबे हो जाता है ना, अंबे माँ हम लोग कहते हैं, तो ऐसे ही हरा शब्द है जो श्रीमती राधा रानी के लिए संबोधित किया गया, भगवान की शक्ति, और बोलते समय वो हरे राम हरे कृष्ण हो जाता है। तो कृष्ण भगवान का नाम है और राम भी कृष्ण का ही नाम है, उनको आत्मा राम कहते हैं। तो ये राम शब्द तीन अर्थ हो सकते हैं, एक भगवान रामचंद्र, तो जब भगवान रामचंद्र होगा तो ये हरा राधा रानी नहीं रहेंगी, ये सीता देवी हो जाएंगी। दूसरा भगवान कृष्ण जो आत्मा राम, और तीसरा बलराम, उनको भी राम कहा जाता है, लेकिन प्रमुखतः इस मंत्र में ये हम लोग जो राम कहते हैं आत्मा राम शब्द के लिए है। और इस मंत्र का अर्थ ये है कि हे भगवान की शक्ति, हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए, ये इस मंत्र का अर्थ है। जब हम लोग महामंत्र बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो हम उनकी शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें उनकी सेवा में लगाइए। मंदिर में प्रवेश करते समय सन्मुख दंडवत क्यों नहीं करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने कहाँ देखा? शायद इस्कॉन मंदिर में ही देखा होगा। वो लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ना सीधा नहीं करते सन्मुख। आप यही प्रश्न है ना, जिसका भी प्रश्न है सन्मुख मतलब ऐसे। तो उसका कारण ये है कि जहां भी आप मंदिर में जाइए तो भगवान के विग्रह होंगे और उनके सामने उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो रहते हैं। जैसे अगर शिव जी हैं तो सामने नंदी होते हैं, विष्णु मंदिर है तो सामने गरुड़ जी होते हैं, और अगर इस्कॉन के मंदिर हैं मतलब इस्कॉन में श्री कृष्ण के मंदिर हैं तो श्री कृष्ण के सामने साधारणतः प्रभुपाद जी का विग्रह होता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो जब हम ऐसे दंडवत करते हैं सन्मुख, तो हमारे पांव उनकी ओर जाते हैं, और अगर श्री कृष्ण ये देख रहे, भगवान ये देख रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं कि मेरा आदर कर रहे हैं नंदी की ओर पांव किया हुआ, भगवान देखते हैं मेरा आदर कर रहे हैं गरुड़ जी की ओर पांव किया हुआ, श्री कृष्ण देखते हैं मेरा आदर कर रहे हैं प्रभुपाद की ओर पांव किया हुआ, तो उनको अच्छा नहीं लगता। ये एक कारण है कि हम ऐसे पांव, क्योंकि हमारे पांव किसी की ओर दिखाना ये एक अपमान का बात है, ये आप जान लीजिए। इसीलिए नियम ये है कि जब बैठा जाता है तो पांव को ढक कर बैठा जाता है, किसी को पांव दिखाना नहीं चाहिए। हम आपको दिखाते हैं, ये ऐसे बैठना ये अपमान करना है। अगर समझिए हम यहां पर बैठ जाएं ऐसे आप लोगों की ओर करके, समझ जाते हैं ऐसे बैठते नहीं है, तो ये अपमान है आप सबका। देखिए हम आराम से ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ, तो नियम ये है कि जब भी हम बैठते हैं तो हम लोग पाँव को ढक कर बैठते हैं, ताकि किसी का अपमान नहीं हो। तो इसीलिए जब दंडवत करते हैं तो पाँव उनकी ओर नहीं जाएं, ये एक कारण है। दूसरा कारण, दंडवत करते समय मोबाइल स्विच ऑफ रखना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि भगवान की भक्ति या भगवान की अर्च विग्रह की सेवा, ये हम लोग नारद पंचरात्र या पंचरात्र विधि के अनुसार करते हैं। जैसे हर हर आरती का विधि होता है ना, हर एक की सेवा करने की। आप देखिए ऐसा थोड़ी होता कि पुजारी के जब मन में आए वो कुछ कर लेता है, कभी अगरबत्ती दिखाता है कभी नहीं दिखाता, कभी अग्नि दिखाता है कभी नहीं दिखाता। हर रोज एक ही तरह से आरती होती है, भोग एक ही तरह से लगता है, तो इसको पंचरात्र विधि कहते हैं। और पंचरात्र विधि के अनुसार भगवान को जब दंडवत किया जाए तो भगवान को अपने दाहिनी ओर रखना चाहिए, ये नियम है। तो इसीलिए ऐसे दंडवत किया जाता है। ठीक है, आप कौन सी मुद्रा में बैठे हैं, इस मुद्रा के लिए क्या प्रयास करें, बिल्कुल कोई प्रयास मत कीजिए। और आपकी इच्छा है तो हम नीचे उतर जाते हैं, आप यहां पर आकर बैठ जाइए, बड़े अच्छे से हो जाएगी प्रयास। वैसे इस ये जो मुद्रा है ये योग आसन के अनुसार ये पूर्ण आसन नहीं है। जैसे पद्मासन होता है तो ये अर्ध पद्मासन है, ये पूर्ण पद्मासन नहीं है। पूर्ण पद्मासन भी होता है जिसमें दोनों पांव इस तरफ आ जाते हैं ऊपर, उसे पूर्ण पद्मासन कहते हैं, लेकिन ये अर्ध पद्मासन है, या कभी कभी इसे सुखासन भी कहा जाता है। तो आप चाहें तो इसमें बैठ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ भी आकर बैठ सकते हैं, आपके लिए स्थान है। थैंक यू। क्या हर समय भगवान का नाम लें लेकिन मरने के समय कुछ याद नहीं तो भगवत धाम जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवन भर हरे कृष्णा की और मरने के समय भूल गया तो क्या होगा? कृष्ण कृष्ण। और दूसरा है, भगवान का नाम लें तथा अंतिम समय में ज्यादा कष्ट हो तो इसका जीवन से पर्याय क्या है? अच्छा, तो पहला प्रश्न है कि मान लीजिए जीवन भर नाम लिया और अंत में भूल गया या नहीं ले पाया, हो सकता है कोमा वगैरह में चला जाए, मरने के समय भगवान का नाम नहीं ले पाया, तब क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप लोगों का क्या उत्तर है? रामानुजाचार्य का नाम सुना है आपने? ओके, तो रामानुजाचार्य ने यह प्रश्न अपने गुरु से पूछा था। उनके गुरु ने उन्हें मंत्र दिया, भगवान के नाम का मंत्र उन्होंने कान में दिया और कहा किसी को बताना नहीं। तो रामानुजाचार्य ने कहा क्यों नहीं बताना? तो उन्होंने कहा ये भगवान का नाम है, इससे बड़े जल्दी शुद्धिकरण होता है, लेकिन ये गुप्त रखना, बताना नहीं। तो रामानुजाचार्य उसी दिन गए गांव में, जो सबसे ऊंचा स्थान था वहां पे खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्ला के सबको बता दिया ये मंत्र का जाप करो। फिर गुरु के पास आए तो गुरु ने कहा तुम कैसे व्यक्ति हो, तुमको मना किया था, तुम अभी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, नरक में जाओगे। उसने कहा एक व्यक्ति नरक में जाएगा ना, लेकिन बाकी सारे जिनको मैंने बताया उनका तो उद्धार होगा ना, कोई बात नहीं, मैं नरक में जाने तैयार हूं। तो उनके गुरु ने कहा तुम एक सच्चे शिष्य हो। तो फिर ऐसा एक प्रश्न उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं नाम ले रहा हूं रोज, आप भगवान को पूछिए। उनके जो गुरु थे वो सेवा किया करते थे भगवान के विग्रह की, तो आप भगवान से पूछिए कि अगर मैं भूल गया उन्हें मृत्यु के समय, अगर याद नहीं आया, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा नाम लेते हुए अपना शरीर छोड़ता है, मेरा स्मरण करते हुए, वो मुझे प्राप्त करता है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि महाराज अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, जीवन भर नाम लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं पूछकर बताऊंगा। तो पूजा करते थे, पूजा करते करते उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि भाई ऐसे ऐसे मेरा शिष्य पूछ रहा। तो अगले दिन रामानुजाचार्य उनके पास गए, पूछा आपने भगवान से पूछा? बोले हाँ। क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा भगवान ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर मेरा नाम लेता है और किसी न किसी कारण से, मान लीजिए मृत्यु के समय, वो मुझे भूल जाता है, लेकिन मैं उसको भूलूंगा नहीं, मैं उसको याद रखूंगा। वो मुझे भूल सकता है, मैं नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा उसको लेने के लिए। इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि नाम लेते रहिए, और नाम लेते रहेंगे तो मृत्यु के समय भी वही होगा। ये हमारे कई भक्तों का अनुभव है। हम लोग जैसे हर चीज में हरे कृष्णा बोलते हैं, वो बोलने होते हैं, कई भक्तों का ऐसा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, बस तो जोर से चिल्लाते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उनका बड़ी एक्चुअली जब कष्ट में होते हैं ना तो नाम बड़ी तीव्रता से आता है, वैसे नहीं आता है तीव्रता से, तो चिल्लाने लगते हैं। तो ये भक्त का अनुभव है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो मृत्यु के समय निश्चित नाम आएगा भगवान का, और बाय चांस भूल गए हम लोग तो भगवान नहीं भूलेंगे, चिंता मत कीजिए, भगवान याद रखेंगे। और दूसरा प्रश्न था भगवान का नाम लेने से अंतिम समय में ज्यादा कष्ट हो तो इसका क्या पर्याय है? इसका यही अर्थ है कि भगवान आपको शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कष्ट होने से फिर से जीवन लेने की इच्छा नहीं करता व्यक्ति। लेकिन अगर कष्ट ज्यादा नहीं हो तो उसको लगता है कि जीवन कोई बुरा नहीं था, एक बार और जी सकते हैं, है ना? ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट हुआ था, एक दो बार जेल जाना पड़ा, वो तो ठीक है, वैसे कुछ नहीं, बाकी तो जीवन अच्छा था। थोड़ा बहुत और कष्ट हुआ था, हाथ पांव टूट गया था, लेकिन ठीक है, जीवन अच्छा था, तो इसलिए कष्ट होना चाहिए। नरसिंह भगवान का आविर्भाव कहां पर हुआ था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। एक, यहां पर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर अहोबिलम करके एक स्थान है, जहां पर ऊपर चढ़कर एक बड़ा खंबा भी है, तो कहा जाता है कि वहां पर वो प्रकट हुए थे, तो एक स्थान वो है। और दूसरा एक वर्णन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि हिरण्यकश्यपु स्वर्ग में राज्य करता था इंद्र के उसमें, तो भगवान शायद वहां प्रकट हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि ये जो अहोबिलम स्थान है नरसिंह देव का, नव नरसिम्हा आसपास है, तो वहां पर प्रकट हुए थे, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। प्रश्न है कि सेवा परम धर्म है या कर्तव्य भगवान है? खैर ठीक से समझ नहीं आया, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सेवा करनी चाहिए या कर्तव्य करना चाहिए, शायद ये प्रश्न है। अगर ये प्रश्न है तो दोनों ठीक हैं, सेवा करनी चाहिए और कर्तव्य भी, क्योंकि हर जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। हमारे कर्तव्यों में सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। क्यों? देखिए, हम लोग कर्तव्य करते हैं इस जन्म में अपने माता पिता की सेवा करके, तो वो भी कर्तव्य है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भगवान हमारे परम पिता हैं, फिर उनकी सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो माता पिता की भी करें और भगवान की भी करें। तो अगर ये प्रश्न है कि हम अपने भौतिक कर्तव्यों को करें कि भगवान की सेवा करें, तो इसका उत्तर ये है कि कर्तव्यों को भगवान से जोड़कर उसको सेवा के रूप में करें, वो सच्ची सेवा। अपने कर्तव्य त्यागने नहीं है, आप परिवार चला रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, समाज छोड़ना नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भगवान से जोड़ने की आवश्यकता है। तो जब कर्तव्य भगवान के लिए किए जाते हैं वो सेवा हो जाती है। बस कर्तव्य और सेवा में इतना ही अंतर है। जब आप कर्तव्य केवल अपने लिए, अपने परिवार पालन के लिए करते हो तो कर्तव्य रहता है, लेकिन उसी कर्तव्य को जब भगवान से जोड़ देते हो तो वो सेवा हो जाती है। बड़ा सरल है। तो ऐसी सेवा हमें सबको करनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के, कुछ पूछना चाहते हैं या कोई लिख कर भेजना चाहते हो? ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो जैसे हम लोग जप के विषय में बात कर रहे थे, अब आप सबसे एक प्रार्थना करेंगे। आज ये 2 दिवस का जो सत्र था आज समाप्त हो रहा है। बड़े आभारी हैं आप सबके, आप लोग